October 21st, 2006, Kartik evening class.
Pancha kalpataro vyasya sivasin sukhayunata vaitanam bhavana vaishnavetyo namo mahapradanyaya krishna prema pradayati krishnaya krishna chaitanya namne गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय प्रणाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय करभक्ताय खंडश्यामलिं सतारभिरन्तु मन्दिकदण्डिनर जटं जागृतरोचिसंविदवतं पट्टं वरक्षस्य वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिगसत्तमाहिरं राधास्कन्दनिवेशितजल्पजं ध्यायेन्दाम्
भारतवर्ष में या विदेशों में जो भारतवासी रहते हैं उनका दीपावली का पर्व है। लक्ष्मी देवी का आगमन हो इसलिए दीपावली जलाते हैं। रामचंद्र जब लंका विजय करके लौटे तो दीपमाला के द्वारा उनका स्वागत किया गया। कृष्ण जब पांडवों का यज्ञ करा करके जब लौटे तो दीपमाला द्वारा द्वारका को सजाया गया था। किंतु मैं समझता हूं दीप मने प्रकाश। मां तमसो जो तीर्गमन अंधकार के तरफ में मत जाओ। माने क्या? संसार चक्र में मत फंसो। अंधकार है, विषयों में आसक्ति, घर बार स्त्री पुत्र परिवार में घर में आसक्ति, ये अंधकार है। इसे जीवन मनुष्य जीवन जो भगवान ने कृपा करके दिया वो बेकार हो जाता है। इसलिए भक्ति के द्वारा प्रकाश होता है और उस भक्ति के प्रकाश में हम अपने को और भगवान श्री कृष्ण को सबको हम देख सकते। ये जत्था की भक्ति ही प्रकाश करने वाले, उनके प्रकाश में हम भगवान को भी देख सकते हैं, उनके परिकरों को देख सकते हैं, अपना स्वरूप देख सकते हैं। ये दीपावली का तात्पर्य है। और
Today is Sri Dipavali. So today, not only in India, but all around the world where Indians are residing, they are today performing this ceremony of Dipavali. On this day, Lakshmi enters all homes, therefore she is welcomed with lamps. On this day also, after defeating Ravan, Sri Ramchandra Bhagavan returned back to Ayodhya and was welcomed with many lamps. Also, after the completion of the Ashwamedha Yagyas of the Pandavas, the Dwarkavasis welcomed Krishna back to Dwarka with this same Dipavali festival. But really, I think, Tamo Ma Jyotirgama, the real Dipavali means, the Vedas say, don't go towards tamas, ignorance, which is attachment to this material world and attachment to wife, children, woman, etc. Don't go towards ignorance. Jyotirgama, come towards the light. Do not waste this human form of life in material enjoyment. Therefore, Bhagavan can be seen by the light of bhakti. Therefore, Dipavali represents we are praying for the power to see Bhagavan, his devotees, and even our own selves.
Madhurya ka dumbini. द्वितीय द्वितीयांक आज सवेरे बताया था भक्ति लता का अंकुर होने पर उसमें दो पत्ते लगते हैं और दो पत्तों में एक निशग्न और एक सुखदा सब प्रकार के क्लेश दूर हो जाते हैं। प्रारब्ध अप्रारब्ध पूर्व और अभिज्ञ सभी प्रारब्ध कर्म का खंडन नहीं होता, बहुत कठिन है। ज्ञानियों को मुक्ति तक स्थिति में भी उनको प्रारब्ध कर्म का भोग करना पड़ता। अपई तु नाम स्पूर्ण तत्ते प्रारब्ध कर्म हो, प्रारब्ध कर्म भी दूर हो जाता। और शुभता सब प्रकार के शुभ गुण जो भक्ति के अनुकूल है वो साधक में उत्पन्न होते हैं। ग्रंथकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विषय को दृष्टांत के द्वारा सहज रूप में बोधगम्य कराने के लिए बोधगम्य करवार पैथी भक्ति और रागानुगा का वर्णन किया। दोनों गुण क्लेशग्नि और शुभता का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। तात्पर्य है कि साधन भक्ति के दो प्रवर्तक हैं, एक लोग और दूसरा शास्त्रों का शासन वक्त। भक्ति की स्निग्धता सुंदरता कोमलता स्वप्रकाशता इत्यादि गुण को देखकर स्वतः ही साधक का मन लाभायक होता है। तात्पर्य रागात्मिक सुबल श्रीधाम वात्सल्य के नंद बाबा के सुधाम और गोपियों का माधुर्य, इन भावों से जो सेवा करते हैं उनकी लीला कथाओं को सुन करके यदि हृदय में लोभ हो मुझे भी ऐसी सेवा प्राप्त हो जाए तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसके संबंध में कहा गया है सिद्धता पूर्वक भाग पर राग नामक राजा का जहां पर लोभ होगा जिस भक्ति में और वो चलेगी उस भाग पर राग नाम का अधिकार। राग माने अनुराग प्रेम से भी और आगे। इस रागानुगा भक्ति की हर अवस्था में राग नामक राजा का अधिकार रखता है। इसी प्रेम के कारण साधक भगवान से अपने संबंध जोड़ता है। सुबह सखा मधुमंगल जैसा सख्य भाव, माँ जसोदा नंद बाबा जैसा वात्सल्य भाव, कोई गोपियों जैसा मधुर भाव, कोई अपना प्रिय आत्मा पुत्र सखा गुरु सुहित इष्ट देव मानता है। इस प्रकार रागानुगा भक्ति के साधन में शुद्ध संबंध की स्निग्धता, इसको यूं समझो जब भक्ति लता के बीच से अंकुरित होकर के दो लगते हैं पत्ते, जब लगते हैं तो पत्ते जब कड़ी के रूप में रहती है तो पहले वाला भाग दिखाई पड़ता है, वो जरा रुखड़ा होता है कर्कश होता है और जब वो पत्ता फूल जाता है तो भीतर में स्निग्ध दिखाई पड़ता है। तात्पर्य क्या, ऊपर वाला भाग वैदिक भक्ति का और भीतर जब पत्ता खुल जाता है तो स्निग्ध अर्थात रागानुगा भक्ति का ये उदाहरण है। अब शास्त्रों के शासन के भाग से साधक की साधना में प्रवृत्ति होती है ये वैदिक चारों वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे रौरवे पड़ी बजे कोई अपना वर्णाश्रम का धर्म पूरा करता है किंतु कृष्ण का भजन नहीं करता और अपना सब दायित्व देश के प्रति समाज के प्रति माता पिता के प्रति सत्य करता है किंतु कृष्ण का भजन नहीं करेगा तो रौरव नरक में उसको भोगना पड़ता है। ऐसा सुन करके जो भक्ति करते हैं वो वैदिक भक्ति वैदिक भक्तों भक्ति के साधकों में भक्ति की प्रवृत्ति भगवान के प्रीति के लिए नहीं होती है बल्कि अपने दुखों की निवृत्ति के लिए होती है और वे भक्तों भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करते हैं इसलिए उसे रुखा और कठोर कहा जाता है। यहां भगवान से रागमूलक शुद्ध संबंध नहीं है पत्ते के रूखे भाग की तरफ वैदिक भक्ति भी नीचे की ओर रहती है जब पत्ता खुल जाता है तो वो नीचे हो जाता है रुखड़ा और ऊपर में इसकी इसलिए अर्थात रगंग का भक्ति की अपेक्षा भक्ति की भिन्नता है अपकर्ष है इसमें शास्त्र विधि की प्रधानता होती है रागानुगा भक्ति में नहीं वो गलत कर सकता है दो चार को जो अनुकूल है उसको छोड़ देगा 64 प्रकार की जो भक्ति है उसमें सभी नहीं करेगा रागानुगा वैदिक भक्ति को सब करना है किंतु रागानुगा वाला जो है उसको गलत करके किसी को छोड़ करके वो बतलाएंगे कि कौन कौन से छोड़ सकते हैं और कौन कौन से ग्रहण कर सकते हैं। लता की पत्तियों में सभी भागों में समान गुण रहता है पाता के समान ही गुण चाहे ऊपर हो और नीचे वाला हो चिकनी ओर का कुछ गुण और रूखी तरफ का कुछ गौरव और गुण नहीं दोनों ही क्लेश अपनी और सुविधा दोनों रूप गोस्वामी ने लिखा है जत्र रागान वाप्ता त्वाद प्रवृत्ति उपजाये थे शासने नहीं वसात्रस्य सा वैधि भक्ति से भजन के विषय में कहीं लोग और कहीं शास्त्र शासन प्रवर्तक हुआ करता है जिसमें भक्ति का लोग प्रवर्तक न होकर के शास्त्र शासन है वहां वैधि भक्ति चिरंजीव गोस्वामी ने टीका में लिखा है रागो अत्र अनुराग तत्र रुचि भी यहाँ राग शब्द का तात्पर्य रुचि या अनुराग से है यह राग जिस भक्ति का प्रवर्तक नहीं है वो वैसे चक्रवर्ती ठाकुर ने भी ऐसा ही लिखा है कि मूर्ति के दर्शन से या भागवत के दशम स्कंध में पंडित कृष्ण की मधुर लीलाओं के श्रवण से भजन में लोभ को यहाँ पर राग कहा गया है ऐसा राग भक्ति का प्रवर्तक न होकर शास्त्र शासन जिसका प्रवर्तक है उसे वही तुमने एक स्थानीय कैसे कर तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो भगवान हरि हरि तो तव्यप्य यदि जीव देह और दैनिक विषयों में आसक्ति के कारण भयानक मृत्यु का ग्रास हो रहा है और अत्यंत भयानक नर्क यंत्रणा का भोग करता है तो इसे मुक्ति लाभ करने के लिए परमानंद लाभ करने के लिए अखिल आत्मा सर्वेश्वर भगवान श्री हरि के नाम पर कीर्तन करना चाहिए उनकी लीला प्रथम
Hare Krishna, Hare Krishna, Mantra, Hare Mantra, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, Madhurya Kalpini, the second shell of nectar. Therefore, the seed of Bhakti, the Krishna Seva Vasana, when it sprouts, it becomes like a creeper. That creeper first produces two leaves, which represent the two results achieved at the stage of sadhana bhakti. The first result is klesh agni. Klesh means difficulty, agni means to burn. At that stage, all different types of inauspiciousness, troubles, are burned to ashes. One's parabdha karma, that karma which we experience in this body, one's aparabdha karma, that karma which we are about to experience in our millions of future births, kut, that means the sprout of sinful desire or punya, and avidya, ignorance, all these four are destroyed at this stage of sadhana bhakti. Parabdha karma, that karma which we are experiencing now in this present body, is very, very strong and difficult to break. Sri Rupa Goswami in his Namastik has described, even the liberated souls have to taste that parabdha karma. But in this stage, the devotee does not taste. He becomes free from that. Therefore, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur is describing this sadhana bhakti as of two types. One being produced by greed to taste the sweetness of Bhagavan, it is called Lobamai Shraddha or Raganuga. And the second type is called Sasan Sasan Moi Vakya. Being afraid of the injunctions of the scriptures, one begins bhajan. Therefore, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur is giving us an example so we can easily understand these two types of prabriti to perform bhajan. So, just like when a leaf opens, there are two types of bhakti. The first, we should understand, the eternal residents of Goloka Vrindavan, they are called ragatmik. For example, those who serve Krishna in Sakya Ras, like Subal, Sridham and Madhurango. Those who serve in Vatsali Ras, like Madhya Soda and Nanda Baba. And those who serve in Madhur Ras, like the Gopis, they are called ragatmik. Therefore, the sadhak hearing harikatha pertaining to one of these rasas, then he develops a greed. I want to also perform seva like that. Therefore, he is called raganuga because he follows anu that rag of the ragatmik devotees. Therefore, rag also means attachment. He is attached to the performing that type of seva. Therefore, the Brijvasis always have that anurag, that deep attachment to Krishna in any circumstance. Therefore, Krishna cannot break that relationship with them. Therefore, just like when a leaf sprouts, the outside of the leaf is a little rough, but the inside section of the leaf is very smooth. Therefore, because their attraction to Krishna flows in a very natural way, it is compared to the inside of the leaf being very snigdha or soft. And Vaidhi Bhakti represents the downside of the leaf, the outside portion of the leaf, because it's a little hard. Therefore, when we hear, even if one is in Vanashram, but he is not performing bhajan to Krishna, then he goes to Roro, he goes to hell. We hear that even if one completely and perfectly follows Vanashram Dharma, he fulfills all his material responsibilities towards his mother and father, his country, his society, his varna and ashram. But if he does not perform bhajan of Krishna, then he also descends to the hellish planets. Therefore, by hearing this type of katha, bhakti will sprout. And that bhakti is called Vaidhi Bhakti because it's impelled of fear of the scriptures. In Vaidhi Bhakti, one is not performing seva of Krishna due to love and affection for Krishna, rather being afraid of the ocean of repeated birth and death and the troubles caused by Maya, he performs bhajan. Therefore, in Vaidhi Bhakti, there is no thick relationship like in Raganuga Bhakti. Therefore, it represents the lower side of the leaf. because in that sense it is inferior or subordinate. Therefore, Vaidhi Bhakti is subordinate to Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti has some special qualities that it gallops, it jumps on the head of everything. Sri Rupa Goswami gave 64 limbs of bhakti. But if Raganuga Bhakti being of a superior nature, if some angas of devotion are left out, there is no fault. But Vaidhi Bhakti, you have to follow all 64 limbs. Therefore, which limbs can be left out we will discuss later. Both sides of the leaf are important, and in one sense both sides of the leaf are of equal value. And both types of bhakti, Vaidhi Bhakti and Raganuga, both give the true results of Kleshagni and Subhada. Kleshagni means destruction of obstacles, Subhada means the attainment of all auspiciousness. Therefore in simple language, Rag means ruchi, taste, attraction towards Krishna. And an absence of that attraction or rag, in the absence of that rag, that bhakti will be called Vaidhi Bhakti. That greed may arise by having darshan of the deity or by hearing the Srimad Bhagavatam. Therefore, Sukadeva Goswami has said, Tasmat Bharata Sarvatma. O Bharat, the Jivatma, because of attachment to material things, he becomes afraid of descending to the hellish planets. Therefore, for that reason, he takes the name of Bhagavan and hears Hari Katha.
Prathame, kleshagni pata. Kleshtaki avidya. Avidya mane, je atmatattva ke bhule jawa. कृष्ण के भूले जाओ अनित्य वस्तुओं को नित्य समझना स्त्री पुत्र परिवार घर इत्यादि को नित्य समझना अपवित्र को पवित्र समझना दुखों को सुख समझना देह गेह स्त्री पुत्र पिशाच वैभव नश्वर वस्तुओं को नित्य समझना हार मान सरक्त अस्थि मल मूत्र आदि से परिपूर्ण इस अपवित्र शरीर को परम पवित्र और मैं समझना इन क्षुद्र विषय सुखों के परिणाम के परिणाम स्वरूप जन्म मरण आदि नरक दुख भोग होते हैं ऐसा बुरी के उन्हें अविद्या कहा अस्मिता दृक् शक्ति दर्शन शक्ति की एकात्मता का ज्ञान अस्मिता अर्थात मैं और मेरा आमी और अमार शरीर के आमी शरीर संबंधी वस्तु बुद्धि के अमार एक मोह एक बोले अस्मिता राग राग माने विषय प्रति जे अनुराग आछे कहा के बोले राग सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति के उपायों की कामना को राग करते हैं अथवा अभिलषित वस्तु को पाकर पुनः अधिक पाने की कामना को राग पेशियों में आसक्त और उसी के लिए प्रयास द्वेष सुख और दुख के कारण के प्रति विरक्ति का नाम द्वेष सुख या दुख जिसके कारण जिसके प्रति विरक्ति का नाम द्वेष है अभिनिवेश अनुकूल विषय प्राप्त करने के आधार से शरीर में अशक्त और मृत्यु के भय से भयभीत होने का नाम अभिनिवेश पुनः प्रारब्ध अप्रारब्ध रूढ़ और बीज एक चार प्रकार आरोपा प्रारब्ध पाप पूर्व पूर्व जन्मे थे अमिजात पाप इत्यादि या अथवा पुण्य करे जहाँ फल को कर्मार्जन में यही शरीर एक जो चे प्रारब्ध अर्थात तार मध्य अंकुर उत्पन्न हुए चे तार के भोग करते हो आज एक भी अभी भय जाए कोटि कोटि जन्म जमा संचित पाप छोटा के बोले अप्रारब्ध पाप अरूढ़ अथवा कु सुख पाप जो पाप का बीज रूप धारण करके आने वाले समय में फूटेंगे। और प्रारब्ध कर्म की समष्टि के रूप में ये अवस्थित रहा। अब बीज पाप वासना वायु वासना के रूप में रहते हैं और प्रारब्ध के पृष्ठभूमि है। ये सभी क्लेश हैं, ये सभी क्लेश भक्ति के द्वारा दूर हो जाते हैं। ये क्लेश अग्नि है। अपराध फलम पापम पुष्टम बीज फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रतिलीयते प्रतिलीयत विष्णु भक्ति रसा। जहां देर आत्मा अर्थात शरीर मन प्राण आदि सभी कृष्ण भक्ति के निविष्ट स्थान है, प्रारब्ध अप्रारब्ध पूर्व पाप भी फलोन्मुख सब कुछ भक्ति द्वारा मायावादी रहा। मुक्ति एकदम चरण सीमा ते पहुंची छे एवं अवस्था ते तहां दे प्रारब्ध कर्म भोग करते हो। किंतु वैष्णव नवा भाग बोले ऊपर आप प्रारब्ध कर्म तहां दे के भोग करते
for Kreshagni. In Kreshagni, avidya or ignorance is completely destroyed. What is avidya? Avidya means forgetfulness of the true self and forgetfulness of Bhagavan. Accepting what is temporary to be eternal, accepting which gives suffering to think, to accepting that which is temporary to accept as being eternal, that which is suffering to accept as being full of happiness, that which is pure to accept, that which is impure to accept as pure. This is all called avidya, ignorance. It pertains to the body. Therefore, this avidya has six components. Avidya, ignorance, asmita, illusion, thinking constantly I am mine, forgetfulness. Thinking, I am this body and what pertains to this body belongs to me, it is for my enjoyment. Rag. Rag means attachment towards the objects of the senses. Dvesh. Upon not attaining that happiness, one feels detachment, disgust, envy. Abhinivesh. Absorption in falsity and fear of death. These six components of avidya. Also, we should see there are four sub-compartments, Parabdha, Aparabdha, Kut and Bij. Parabdha, that karma which I am experiencing now in this present body. Aparabdha karma, what I will experience in the future due to my past activities. Bij means the seed of pious or sinful desires which have not sprouted, which are still in an unmanifest state, that also refers to aparabdha karma. And finally, when that seed sprouts in the form of vasana, desire, which is now manifest in this body, therefore it refers to aparabdha karma. These four are also destroyed at this stage. By engaging the body, mind, senses, intelligence, and all the objects in our possession in bhakti, then the attachment to all these things are completely destroyed. Avidya is uprooted. Therefore, even the Mayavadis, which strive very hard for mukti, and they consider that to be the topmost achievement, even those Mayavadis, those liberated souls, have to taste Parabdha Karma, this body. But the devotees, even upon achieving Namabhas even, they do not have to taste that Parabdha Karma.
यद्यपि विषयटा भी रुचिकर होच्छे ना, निरस मने हय, तथापिओ साधारण भावते जाना उचित जत रकम पाप ताप आछे भक्ति प्रारम्भे ते सब दूर हो जाए। एक ही मूल जीवित though this research is not textbook, but we should know in brief that in the beginning of bhakti, all kinds of paap, sin, everything goes away. Even prarabdha karma. Rupa Goswami had told that tad brahma sakshat kriti nishthayati vinasham ayati vinasa bhogai apaituna vispurne jatatte prarabdha karma. Vedas are telling that even prarabdha karma, which mayavadi, advaitvadi, they will have to test it shortly. But bhakta has never to test it. So bhakti is how glorious and useful. Ekhan amara prathame ekhane devi pratik na manshi ganga hoyeche. You have to go with Pandaji, Manshi Ganga, and give Pradeep there, and then return back and here in front of Thakurji in each house, room, upside, here, there, everywhere you should give for Pandaji. Thank you.